श्री
राम राम हरे हरे। तो आप सब पीतलवासियों का तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव बर्थडे में स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य भिचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से उनके भक्तों के द्वारा दूसरे साल भी आज तीन दिन का कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम आपके पितौन के स्थान में मनाया जा रहा है। आप भगवान के बर्थडे में भाग ले रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के जन्मदिन में भाग ले रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं, जितनी दुनिया की सारी पॉपुलेशन है उनमें से हार्डली 0.1% भी नहीं होंगे जिनको ये सौभाग्य मिलता होगा। और आपकी इस कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके भी 1% को मुश्किल से ये भाग्य मिलता है। तो ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां पि सिद्धानां कश्चन माम वेति सो तत्वतः। हजारों में से कोई एक आधा होता है जो कहता है कि जीवन में भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारा संगी साथी है। बाकी संसार समय के साथ अपना काम निकलने के बाद हाथ निकाल देंगे। ऐसे हजारों जो भगवान को जानने के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं उनमें से कोई एक होता है जिसको भाग्य से भगवान के इतने सुंदर जन्मदिन के उत्सव में भाग लेने का मौका मिलता है। तो आप उन बहुत अल्पसंख्या भाग्यशालियों में हो जो भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म उत्सव में भाग ले रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कथा सुनने में जब बहुत उत्साह होता है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं ये हमको पता लगता है, भगवान की कथा हमारे जीवन के सुख का साधन है ये जब हम समझ जाते हैं और भगवान की कथा ही अमृत है, तो फिर हम भगवान की कथा सुनने में उत्साह रखते हैं, एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। जैसे ही कोई भगवान की कथा सुनने के लिए एंथुजियास्टिक होता है, उत्साहमय होता है, श्रद्धा बढ़ती है, भगवान कथा में से कान के द्वारे उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। ये भागवत का श्लोक है, कृष्ण प्रवेश करण रंध्राणाम, कान के द्वारा प्रवेश करते हैं, कथा में से निकलकर। आपको भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक 125 ईयर्स तक इस धरती के ऊपर अवतार लेके लीला किया। भगवान ने लीला की द्वारका में सबसे ज्यादा समय, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स द्वारका में। वहां श्री कृष्ण पूर्ण मतलब कंप्लीट अपने द्वारकाधीश यदुपति यदुकुलेश्वर के रूप में रहे। 16 से 18 साल तक श्री कृष्ण मथुरा में रहे। वहां वो पूर्णतर, जैसे गुड बेटर, पूर्णतर मतलब वहां उनका प्रभाव और उनका जो स्वरूप था, जो उनका लीला थी वो और मधुर थी। और 10.5-11 साल श्री कृष्ण वृंदावन में केवल रहे। वहां पूर्णतम द्वारका गुड
मथुरा बेटर, वृंदावन दी बेस्ट, पूर्णतम एक ही कृष्ण, लेकिन अपने प्रकाश को सबसे ज्यादा परिपूर्ण रूप से छलकता हुआ केवल वृंदावन में दर्शन होता है।
जैसे घर के अंदर आप होते हो तब आपका उठना बैठना परिवार के साथ प्रेम का होता है, जब ऑफिस में जाते हो तो फॉर्मेलिटी से उधर बैठना उठना दूसरा होता है, और फ्रेंड्स के साथ कहीं खेलने जाते हो तो दूसरा होता है। तो हम ही अपने जीवन में 2-3 पर्सनालिटी से जीते हैं, घर में हम दूसरी पर्सनालिटी से जीते हैं, बिजनेस में दूसरी पर्सनालिटी से जीते हैं, ये सत्य है कि नहीं है? लेकिन हम हैं वही, अलग अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन भगवान इतना शक्तिशाली है कि जहां है वहां पर्सनालिटी ही अलग बन जाता है, वही एक कृष्ण 3 जगह 3 भावों में प्रकट होता है, तो भाव अलग हो जाते हैं। तो बात हम ये कर रहे थे, श्री कृष्ण 125 साल के बाद अपने धाम चले गए, स्वधाम चले गए। देवता पहले तो बुलाने आए देवी पृथ्वी माता के साथ कि हमारे यहाँ अवतार लेके आओ, धरती का भार समाप्त करो, और फिर देवता वापस ब्रह्मा आदि आके कहते हैं श्री कृष्ण अभी आपका काम तो परिपूर्ण हो गया, असुरों का भार उतर गया, धर्मराज युधिष्ठिर को राज मिल गया, अब धर्म स्थापित हो गया, आप अपनी इच्छा से चाहो तो अपने धाम वापस पधारिए। तो श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, ये लीला तो आज नहीं कहनी है, लेकिन श्री कृष्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की रानियां अर्जुन लेके आया हस्तनापुर, और वहां से वृंदावन में आए, और वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो उस वक्त उद्धव ने, जो भगवान श्री कृष्ण का कजन है, वसुदेव का घर में कृष्ण प्रकट हुए, वसुदेव का भाई देवभाग उसका बेटा उद्धव, और उद्धव की डेफिनेशन है, उद्धव मीन्स उत्सव मीन्स फेस्टिवल, जहाँ उद्धव है वहाँ आनंद है, और उद्धव को श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर छोड़ के गए हैं। आज भी उद्धव बद्री का आश्रम में है और वृंदावन में है, दो जगहों में रहता है। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंडसन वज्रनाभ को भागवत कथा सुनाई, जो श्री कृष्ण से सुनी थी। उस वक्त श्री कृष्ण प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज आदि भक्त आए, बड़ा कीर्तन में आनंद हुआ, सबने श्री कृष्ण को प्रार्थना की, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोला एक वरदान दीजिए, जहां आपकी कथा हो ये भागवत की, वहां आप भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाना। और भगवान श्री कृष्ण का तथास्तु। तो जब से आप कथा में आने की भावना करेंगे, और कथा सुनाने वाला, जैसे हमने आपको कल कहा था, मांगने वाला नहीं है, कृष्ण भक्ति देने वाला है, तो श्री कृष्ण आपके हृदय में जरूर आएंगे। अब हमारे भगवान हृदय में कथा से आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ये प्रश्न है बहुत अच्छा। तो आइए थोड़ा सा दर्शन करते हैं। वसुदेव और देवकी के शादी के बाद आकाशवाणी सुनकर कंस ने वसुदेव के ये कहने के ऊपर, इसके सारे बच्चे आपको दे दूंगा जिनसे आपको भय नहीं है, मेरी बात को याद रखना, वसुदेव ने कहा आपको इसके सारे बच्चे दूंगा जिनसे आपको, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ, आई विल गिव ऑल दोस। ये संस्कृत की बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, और वसुदेव ने अपना वचन निभाया। पहला बच्चा कीर्तिमान का जन्म हुआ, कंस के हाथों में दिया। कैसे भी कंस ने कहा 8वें से डर है, लेकिन नारद के कहने के ऊपर कंस ने पहले को मारा और देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और पांच और बच्चे हर वर्ष में जन्म लिया और छह के छह कंस ने मारे और माँ के सामने पत्थर के ऊपर पटके और माँ उस खून के निशान को रोज देखती थी। तो ये छह कौन थे जो उसी गर्भ में आए जिसमें भगवान को आना है और उनको आंखों के सामने माता पिता के मारा गया, ये कौन थे जो शास्त्र को पढ़ते हैं, जानते हैं, गुरुओं के शरण में रहते हैं, परंपरा का साधन अपनाते हैं, उनका मानना है ये छह छठ गर्भासुर ब्रह्मा जी के श्राप से छह देवता असुर बने थे, मरीचि के पुत्र हैं, उनको अपने बाप के हाथों से मारे जाने का श्राप था और कंस काल ने भी राक्षस था जो इन छह का बाप था। ये कंस के अपने बेटे थे पूर्व जन्म के और इनको कंस के हाथों मरना था। तो देवकी के गर्भ में आने से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कल हमने आपको एक संदेश दिया था कि देवत की भक्ति रूपी भक्ति रूपेणी है, भक्ति है और उसकी रक्षा के लिए कोई भी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़े तो करना, उसको जरूर बचाना और वसुदेव ने देवकी को बचाया था। तो देवकी भक्ति है, ये छह गुण, ये छह जो गर्भ हैं, ये छह अवगुण हैं जो भक्त के हृदय में होते हैं। और मरीचि मन, माइंड, माइंड को रिप्रेजेंट करता है और माइंड के छह विकार हैं, दीज सिक्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, मोह, इल्यूजन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ग्रीड, नकाम, क्रोध, मोह, मद, एरोगेंस, मत्सर, एनवी। ये छह अवगुण भक्त के हृदय में मन के विकार होते हैं। कंस फियर पर्सोनिफाइड है, भय है। इस भौतिक जगत में भय भी, डरना चाहिए, पता नहीं कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है, एक क्षण में क्या हो जाए। वी शुड ऑलवेज बी फियरफुल, ऑन एवरी स्टेप देर इज डेंजर, ऑन एवरी स्टेप देर इज डेंजर, पदम पदम विपदिम भागवत कहती है। तो जब तक भक्त के हृदय से ये छह अवगुण नाश नहीं होंगे तब तक भगवान का प्रकट्य नहीं होगा। तो ये छह बच्चे मारने के बाद श्री कृष्ण गोलोक में बैठकर देवी को, योग माया को मंगाकर कहते हैं, अब देवकी के गर्भ में मैंने बलराम जी को भेजा है, जो शेष अनंत शेष जिसके ऊपर मैं सोता हूं, भगवान विष्णु का शयन किसके ऊपर करते हैं, शेष के ऊपर, शेषाशायी है, शेष पे सोने वाले हैं, मेरे लिए सीट बनाने गया है, मेरे लिए आसन बनाएगा, शेष को वहां छोड़ेगा। बलराम रोहिणी का पुत्र है, आप इसको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाके स्थापित कर दो और देवी उसके बाद तुम मेरी छोटी बहन बनना और यशोदा जी के वहां प्रकट होना। और देवी को ये भगवान ने आदेश दिया गोलोक में और देवी ने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। सातवां गर्भ समाप्त, आठवें गर्भ में श्री कृष्ण कैसे आते हैं ये सुनिए। ये इसलिए सुनना जरूरी है कि हमारी जन्माष्टमी आपकी और मेरी उस दिन होगी जिस दिन कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। कृष्ण हम सबके हृदय में प्रकट होने के लिए तैयार हैं, हमको हृदय को तैयार करना पड़ेगा। कैसे कृष्ण प्रकट हुए सुनिए, भागवत का श्लोक बोलता हूं। भगवान अपि विश्व आत्मा
वो भगवान जो सबसे प्रेम करते हैं, सबके हृदय में सदा के लिए बसते हैं। काम क्या है उनका? भक्तानाम अभयंकर, अपने भक्तों को फियरलेसनेस देते हैं, भक्तों को भय से मुक्त कर देते हैं। तो क्या दूसरों को, दूसरों की भी देखभाल करते हैं, लेकिन उनका खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन भक्त को जैसे एक माँ के बाप के 4-5 बच्चे हों तो बड़े हो जाके अपने जा काम करते हैं, लेकिन सबसे छोटा होता है उससे बड़ा प्रेम होता है। इसका मतलब नहीं है दूसरों से प्रेम नहीं है, लेकिन भक्त छोटे बेटे की तरह है जिसको माँ आंखों से दूर नहीं करती है। तो भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करने वाले भगवान ने क्या किया? आवेश अंश भागे न मन अनंक दुम दुबी, वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हो गए। कैसे पता लगा? बोला वसुदेव चमकने लगा, इफलजंस निकलने लगा। आप देखते हैं कभी फोटो आते हैं हमारे पास किसी साधु महात्मा, तो चारों ओर बड़ी लाइट दिखाते हैं, द ग्लो लाइट का दिखता है। इट एक्चुअली मीन्स ही हैज रियलाइज्ड दी परमात्मा, उसके हृदय में भगवान का उसने प्रकट किया है, इसलिए वो चमक रहा है। और दूसरी लाइन में लिखा है जगत मंगलम, जगत का मंगल करने वाला, सबका भला चाहने वाला भगवान। वसुदेव के मन से देव रूपेण देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गए। इसको बोलते हैं गुरु जब शिष्य को दीक्षा और शिक्षा देता है तो अपने हृदय में जो साधन से भगवान का साक्षात्कार किया है, रियलाइज किया है, वो अपने शिष्य को के हृदय में स्थापित करता है। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षित कर दिया, अब देवकी चमक रही है, प्रकाश निकल रहा है देवकी से। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंस के 4 दीवारी में देवकी की सुंदरता कोई नहीं देख सकता था। कितनी सुंदर देवकी हो रही थी जब भगवान हृदय में प्रकट हुआ, हृदय से नीचे पेट में आया और पेट फूलने लगा जैसे देवकी गर्भवती है। और कंस आया और कंस ने आके ही देखा, मुस्कुराती हुई देवकी को देख के कहता है 6 बच्चे पहले तो इसके गर्भ में आए, तब दुखी थी, आज मुस्कुरा क्यों रही है, बड़ी खुश दिख रही है। इसका मतलब है कि इसके उदर के अंदर मेरे को मारने वाला हरि निश्चित रूप से आया है। कंस को पता लग गया कि मेरा मारने वाला इसके अर्गर्भ में आया है, लेकिन कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाया देवकी का मन बदल गया। नहीं, स्त्री को नहीं मारूंगा, गर्भवती को नहीं मारूंगा, नरक में जाना पड़ेगा, मेरी बदनामी होगी। बोला जब बच्चा जन्म लेगा तब देखा जाएगा। कंस चला गया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद, चंद्र, इंद्र आदि सब कंस के जेल खाने में आए, और भगवान कृष्ण जो अभी गर्भ में दिख नहीं रहे हैं उसको प्रार्थना करने लगे कि आपने अपने वचन को निभाया, आपने आने का वायदा किया था, आप आ गए हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप आते हैं तो संसार वाले आपके बारे में जानते हैं, और जब आपके बारे में जानते हैं तो आपकी सेवा करते हैं, जब आपकी सेवा करते हैं तो आपके चरण कमल इनके लिए ऐसी बोट बन जाता है जो संसार सागर से ये पार हो जाते हैं, आपने बड़ी दया की है। और फिर देवताओं ने देवकी को कहा, माँ देवकी अब तुम कंस से डरना मत, तुम्हारे हृदय में भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं, अब तुम्हारे दुख के दिन गए। देवता ये आश्वासन दे के चले गए और तब भगवान के आने का समय हुआ। अजन्मा जन्म लेने वाला है, और नक्षत्र कौन से में जन्म ले रहा है, नक्षत्र का नाम नहीं लेते हैं, गुप्त रखा जाता है। तो लिखा है विष्णु से जिसने जन्म लिया ब्रह्मा, अजन्मा से जिसने जन्म लिया उसके नक्षत्र में, उस नक्षत्र का नाम है रोहिणी नक्षत्र। तो श्री कृष्ण जब रोहिणी नक्षत्र आया विशेष रूप से टाइम ऐसा तैयार हुआ, रात के 12 बजने वाले हैं, उस वक्त अंधेरी रात है लेकिन पूरा चंद्र निकल आया। क्यों चंद्र पूरा निकल आया? चंद्र वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं, चंद्र आनंद में मगन होके बढ़ता बढ़ता पूरा हो गया, और चंद्र जब पूरा हो गया उस वक्त पहले धरती सुंदर हो गई कि पति आ रहा है, जिसको मैंने बुलाया था, मेरे बुलाने के लिए आया, पृथ्वी पति है भगवान, और पृथ्वी चारों ओर से चारों सीजन के फल फूल और बड़ा वातावरण सुंदर हो गया, और समुद्र नदियां बड़ी खुश हो गई। नदियां तो इसलिए खुश हो गई कि हमारे किनारे के ऊपर ये जो बांस उगता है, इस बांस की बांसुरी बनेगी और कन्हैया इसको बजाएंगे तो हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए आज हम भी आनंद में खुशी करते हैं। तब तो आकाश में बादल आ गए। क्यों बादल आए? कहा इसका नाम कल हमारे नाम से होगा, इसको घनश्याम कहते हैं, आज हम भी भगवान का अभिषेक करेंगे। अब ये वातावरण तैयार हुआ। गंधर्व और किन्नर, किन्नर काले होते हैं, गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन भगवान के आने के समय दोनों प्रेम से गाने लगे। विद्याधर और चारण, विद्याधर तो गुणगान करते हैं, चारण तो भिखारी की तरह लोगों की महिमा गाते हैं, लेकिन दोनों साथ बैठ के गा रहे। अप्सराएं, सब देवता फूल लेके बैठे हैं कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। उस वक्त भगवान कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ, सर के ऊपर सुंदर मुकुट है, कान में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, कौत्सव मणि है, श्री वत्स का चिन्ह है, ऐसे प्रकट हुए। भागवत में लिखा है अद्भुत बालकम चतुर्भुजम, और उसको देख के वसुदेव आश्चर्यचकित होकर प्रार्थना करने लगे कि साक्षात भगवान हमारे घर में प्रकट हुए हैं, कितने हमारे धन भाग है, ये सृष्टि तो आप ही चलाते हैं, आप में समाई हुई है। और फिर देवकी माँ ने प्रार्थना किया और तब भगवान बोलने लगे, बोली मारी माँ, ये तीसरी बार मैं तेरा बेटा बना हूं, तुमने मेरे जैसा बेटा मांगा, मेरे जैसा तो कोई और होता नहीं है, तो मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए तीन बार तुम्हारा बेटा बनाऊं, पहले तुम प्रश्नी और वसुदेव सतुपा थे और मैं प्रश्नी गर्भा होकर तुम्हारे घर में आया, दोबारा तुम अदिति थी और ये कश्यप था वासुदेव, और मैं वामन देव बन के तुम्हारे घर में आया, अब वसुदेव और देवकी मैं तीसरी बार तुम्हारा पुत्र वसुदेव कृष्ण तुम्हारे घर में प्रकट हो। देवकी कहती है मुझे डर लगता है, कंस ने पहले 6 मार दिए हैं, तो ये 4 हाथ वाला रूप छुपा दो, छोटे बालक बन जाओ। और भगवान अपने स्वरूप में छोटे बालक बन गए, और तब वसुदेव को कहा मुझे यहाँ से ले चलो, तुम्हें डर लगता है, नंद गोकुल में यशोदा के वहां छोड़ के वहां कन्या है, उसको लाना। और वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है, वसुदेव ने कहा था सब बच्चे मैं कंस आपको दे दूंगा, तो ये बच्चा क्यों नहीं दिया कंस को? क्या वसुदेव ने अपना वचन झूठा किया? बहुत बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। पहले तो संस्कृत में वसुदेव ने कहा भी ये था कि जिनसे आपको भय नहीं है वो दूंगा, जो भय जिससे आपको है वो नहीं दूंगा, ये उसका भाव था। जो अपने बच्चे भगवान जिसके घर में प्रकट हो और भगवान को जाके कसाई कंस को दे के आए, उसके घर में भगवान क्यों आएंगे? एक बात तो संस्कृत में साफ लिखी है, दूसरी बात वसुदेव ने कहा मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, मन से 100 मिलियन काउ 200 मिलियन काउ ब्राह्मणों को दान दिया, फिर सोचा बच्चे के जन्म के दिन क्या चीज आई शुड सेक्रीफाइस टूडे एंड गिव अवे, वट इज मोस्ट डियर टू मी आई शुड सेक्रीफाइस टूडे ओवर माई सन। और सोचा वसुदेव ने कि इस दुनिया में सबसे प्रिय मुझे मेरा वचन है, मेरा वचन सत्य मुझे बहुत प्रिय है, आज उस वचन को इस गोपाल से सेक्रीफाइस करके फेंक देता हूँ, जाने दो वचन को। अरे मुझे मेरा ये गोपाल कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ के आओ नंद गोकुल में,
और मैंने कंस को कहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, क्या गोपाल की बात मानूं कि मैं अपनी बात मानूं?
गोपाल की बात मानूंगा। ऐसे कृष्ण को ऐसे उठाया वसुदेव ने, जैसे ही हृदय से लगाया वसुदेव ने, हाथों से हथकड़ी नीचे गिर गई, पांव से कड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे लोहे के बोल्ट ताले थे खुल गए, जैसे सूर्य उगते अंधकार चला जाता है। माया ने पहरेदारों को सुला दिया और वसुदेव सुरक्षित बाहर निकल आया। बहादुरों ने देखा कि इसका स्नान भी नहीं कराया है, ऊपर से थोड़ी बूंदाबांदी हल्की करने लगे कि बच्चे का स्नान कर रहे हैं हम, हमारा अपना है, लोग हमारे नाम से इसको जानेंगे। और तब इंद्र आदि देवताओं ने देखा, कोई देखने ले कंस का आदमी, इसको ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो, आंख के सामने की चीज दिखाई न दे। तब तो ऊपर से मूसलाधार बारिश होने लगी और वसुदेव जमुना के किनारे आया तो जमुना पैसिफिक समुद्र की तरह बहुत गहरा पानी और छोलियां, बड़ी वेव्स थी। वसुदेव सूरी सौरसिंह का पुत्र सूरवीर था, उसमें प्रवेश किया, पानी यहां तक आया, बच्चे को ऊपर उठाया। जब पानी यहां तक आया तो बच्चे को सर के ऊपर ले लिया। आपको टोकरी में बच्चा दिखता है, टोकरी में कोई बच्चे को, नए जन्म लेके वाले को टोकरी में कोई नहीं उठाता है, कोई सब्जी थोड़ी है बैंगन भेज के उठा के जाना है टोकरी में, बच्चा तो छाती से लगा के जाते हैं। लेकिन पानी जब यहां से आया तो वसुदेव ने बच्चे को सर के ऊपर रखा। उस वक्त में जमुना जी भगवान की पटरानी चौथी बनेगी, भगवान की क्वीन है फोर्थ। उसने कहा, आज मेरे अंदर से मेरे पतिदेव जा रहे हैं, इनके चरणों का स्पर्श तो करना चाहिए। वो ऊपर उठने लगी और भगवान है तो अभी जन्म लिया है, लेकिन भगवान तब भी भगवान है, कूद के जमुना में गिर पड़े। वसुदेव छटपट आया, हाँ बालक कहाँ गया। भक्त वसुदेव का प्रेम बढ़ने लगा और इतनी देर में उस बच्चे का दर्शन हुआ और बच्चे को उठा लिया। और जमुना ने ऐसे रास्ता दिया, दो टुकड़ों में बट गई, इधर जमुना और बीच में से रोड बन गया। और वहां लिखा है भागवत में, जैसे हिंद महासागर ने रामचंद्र को सेतु बांधने के लिए रास्ता दे दिया था, ऐसे जमुना ने आज रास्ता दे दिया। ये बहुत रहस्य है, कभी आपने सुना नहीं होगा कि पानी में गिरा था, आज आपको सुना इसलिए रहे हैं कि हमने पहले आपको बताया था कि कृष्ण मथुरा में पूर्णतर होते हैं, लेकिन वृंदावन में पूर्णतम होते हैं। तो यशोदा नंदन कृष्णा वृंदावन में है, देवकी नंदन कृष्णा मथुरा में है। देवकी नंदन कृष्णा जैसे जमुना में गए, यशोदा नंदन कृष्ण बन के बाहर आ गए। आप भागवत को आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को ले जाता है तो जमुना के किनारे पे इसी अक्रूर घाट पे अक्रूर ने स्नान करते हुए देखा कि बलराम जी शेष नाग बने हैं और श्री कृष्ण उसके ऊपर विष्णु के रूप में बैठे हैं। तो ये मान्यता है हमारे आचार्यों की कि स्वयं श्री कृष्ण नंद नंदन कृष्ण, जिसमें चार गुण हैं जो नारायण में भी नहीं है, बांसुरी बजाना, परम सुंदरता, परम मधुरता, परम लीला, वो केवल वृंदावन में रहते हैं। और जब वृंदावन से बाहर अक्रूर ले जाता है तो वसुदेव देवकी नंदन कृष्ण जाते हैं। अब एक और रहस्य की बात बताता हूं, कहीं आपने सुनी नहीं होगी, बहुत ये बातें समझेंगे तब कृष्ण कौन है ये समझ में आएगा, तब कृष्ण के अंदर आपका मन लगेगा, प्रेम होगा, तब आप भक्त बनेंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। वसुदेव यहां से बच्चे को लेके नंद गोकुल में गया, वहां योग माया ने सबको सुला दिया था। यशोमती गर्भवती थी, नंद और उपनंद पांच भाई थे, उनकी एक बहन थी, उसको घर में बुलाया था, क्योंकि अब
प्रसव होने वाला डिलीवरी होने वाली थी तो नर्स को बुलाया था। नर्स देख के कहती है इसके जुड़वा बच्चे हैं, इसको ट्विन है। और तब तक जैसे रात के 11-12 बजे योग माया ने सबको वहां सुला दिया। और ये मान्यता है आचार्यों की दो बातों के, दो प्रमाणों के ऊपर। पहले तो श्री कृष्ण ने कहा था कि योग माया मेरी तुम छोटी बहन बनना, तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन बनेगी ना। जब यशोदा, जब देवकी और वसुदेव के वहां कृष्ण प्रकट हुए, उस वक्त कृष्ण ने यशोदा के वहां भी प्रकट हुए। उसकी थोड़ी देर बाद छोटी बहन के रूप में योग माया प्रकट हुई। यशोदा ने दो बच्चों को जन्म दिया, यशोदा नंदन कृष्ण और योग माया। वसुदेव जैसे आया योग माया के प्रकाश में, कुछ देखा नहीं, बच्चे को रखा और योग माया को, और योग माया यहां महामाया हो गई, जैसे वसुदेव ले गया मथुरा, दुर्गा हो गई। पहले वो योग माया थी, भगवान की अंतरंग शक्ति, उसका छाया का रूप। जैसे रावण सीता को नहीं उठा के गया था, रावण सीता की छाया सीता को उठा के गया था। असली सीता तो अग्निदेव के पास थी, रामायण में अगर कभी पढ़ेंगे तो छाया किसकी बात कर रहे हैं? बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। यहां छाया रूप योग माया जो दुर्गा का रूप है, अष्टभुजाधारी है, उसको वसुदेव लेके चला गया। वसुदेव का कृष्ण जो लाया था वो यशोदा के कृष्ण के अंदर मिलके एक हो गया। वसु जब वहां पहुंचा, जमुना ने रास्ता दिया, दरवाजे खुले मिले, देवकी के बेड के ऊपर पुत्री को रखा, हाथों में हथ कड़ी पड़ गई, पांव में बेड़ी, दरवाजे बंद हो गए। बच्ची ने रोना शुरू किया, पहरेदारी ने कंस को बुलाया, कंस ने आके बच्ची को जबरदस्त लिया। देवकी ने पहली बार प्रार्थना की, नहीं मानी, पत्थर पे मारने से पहले 8 हाथों वाली दुर्गा के रूप में ऊपर खड़ी होके हंसने लगी, बोला मूर्ख कंस, तुम इस देवकी को क्यों दुख दे रहे हो, वसुदेव को क्यों दुख दे रहे हो, तेरे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। कंस भयभीत हो गया, ये जो असुर लोग हैं देवी से बहुत डरते हैं, भगवान से नहीं डरते, क्योंकि भगवान तो प्रेम करता है, लेकिन देवी के हाथ में त्रिशूल है, ऐसे डरते हैं। कंस डर गया, वो यशोदा और देवकी को और वसुदेव को प्रार्थना की, उनको जेल से निकाल दिया। यशोदा का अर्थ है दूसरे को यश दे, टू गिव ग्लोरी टू समबडी एल्स। यशोदा ने देवकी को ग्लोरी दी कि देवकी का नंदन मेरे घर में आया, ये यशोदा की मानता है। और सुबह होते ही सबने कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घर में बालक का जन्म हो गया। और वसुदेव वहां जेल से निकल के अपने घर चला गया। ऐसे श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए। कल बड़ा जन्माष्टमी का उत्सव बुनाके में मनाएंगे, आप सबको वहां निमंत्रण देंगे, तब सब गाएंगे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। गाओ, अच्छा नहीं लगता? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।